अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुन तुम खैरा उम्मतिन नासी तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। सूरत आल इमरान आयत नंबर 110। खैरा उम्मत, बेहतरीन उम्मत हो। अब आप देखिए कि यहाँ पे मुसलमानों को, उम्मते मुस्लिमा को कहा जा रहा है खैरा उम्मत। खैरा उम्मत का ताज पहनाया गया, खैरा उम्मत का टाइटल दिया गया। खैरा उम्मत किसे कहते हैं? खैरा का लफ्ज ये भी इसम तफजील है, बेहतरीन उम्मत। अब उम्मत का मकसद वजूद बताया जा रहा है। नंबर दो, उखरिजत लिन्नास, के तुम इंसानियत के लिए निकाली गई। उखरिजत का मतलब है पैदा की गई, लिन्नास दुनिया के लिए। ऐसा नहीं है कि बस अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए। फिर फरमाया तामुरूना बिल मारूफ वतन हौना अनिल मुनकर। अब तीसरी बात है अल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देते हो, वतन हौना अनिल मुनकर और कर यानी बुराई से जो है वो रोकते हो। नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो ये है खैरा उम्मत होने की वजह, ये है जो है वो वैसियते उम्मते वस्त के, वैसियते उम्मते मुस्लिमा के मकसदे वजूद। मकसदे वजूद क्या है कि दुनिया में अब सबसे बेहतर इंसानी ग्रोह हो। हमारी जिंदगी का वैसे उम्मत के मकसद ये है कि नेकी को कायम करना है, बदी को मिटाना है। अब तुम्हारे ये काम किया गया है कि तुम जो है वो दुनिया के लोगों को बताओ कि हदायत क्या है और गुमराही क्या है। खैरा उम्मत लोगों की इस्लाह, रहनुमाई और उनको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी। तामुरूना बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर, ये काम आप क्यों करेंगे? वतुमिनूना बिल्लाह, ये चौथी बात है अल्लाह पर ईमान रखते। तो ईमान का तकाजा ये है कि नेकी का हुक्म देना है, बदी से मना कर। ईमान हर नेकी की जड़ है, ईमान असल बुनियाद है। अगर किसी को भी कोई इज्जत और फजीलत हासिल है तो वो ईमान की बुनियाद पर है। और अब नेकी का हुक्म देना और बदी से मना करना, ये वो नेकी है जो कि ईमान बिल्ला के साथ जो है दरअसल मतलूब है। अब आप देख लें कि पीछे भी आपने ये बात पढ़ी कि उलमाए यहूद क्या करते थे, अता क्या तुम नेकी और तकवा का वास सुनाते हो, आपको जाते वैसियत माँ के जब दूसरों को नेकी का हुक्म देना है, बदी से मना करना है तो अपने आप को भूलना नहीं है। वैसियत मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है के ईमान लाने के बाद वो लोगों के माने यही है कि उम्मत मुस्लिमा तमाम दूसरी कौमों के लिए रहनुमा और लीडर की हैसियत रखती है, और आज उम्मत अपना ये फर्ज जो है वो है। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ने रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे उसे हाथ से और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो जबान ही से रोके, और अगर इतना भी नहीं कर सकता तो कम अज कम घबरा जाने। और ये ईमान का कमजोर किया है। प्यारी बहनों, इस हदीस से ईमान के 3 दर्जे पता चलते हैं। नंबर एक, कोई भी बुराई हो, गुनाह हो रहा हो उसको हाथ से, कुव्वत से जो है वो रोका जाए। नंबर दो, अगर हाथ से रोक सकते तो फिर उसे जो है वो जबान से जो है वो रोका जाए, जबान से कहा जाए कि जो है ये अमल सही नहीं है। और अगर जो है ऐसा भी नहीं कर सकते जो है उसे कम अज कम दिल से बुरा जानना चाहिए, और ये ईमान का जो है वो सबसे जोर दर्जा है। इतने में मैं आपको एक वाकया भी सुनाती हूँ। बड़ा खूबसूरत वाकया है कि एक दफा अबू हुसैन अहमद बिन मोहम्मद खुरासानी, ये एक मरतबा बगदाद में दरियाए दजला के किनारे चल रहे थे करीब से, और अबू हुसैन अहमद बिन मोहम्मद खुरासानी ने देखा कि मल्लाह बहुत से शराब के मटके लेके जो है ना वो जा रहा है। तो अबू हुसैन नूरी भी इस पर चढ़ गए, कश्ती पर चढ़ गए, और कश्ती ने देखा कि शराब के मटके पड़े हुए हैं। अच्छा ये क्या है और किसके लिए है? मल्लाह ने कहा कि आपको इससे क्या लेना देना। हुसैन ने इसरार के साथ मल्लाह से पूछा, बताओ ये क्या है? मल्लाह ने कहा, अल्लाह की कसम आप बड़े फुजूल आदमी हैं, और यह खलीफा मोतदिद बिल्लाह की शराब है, यानी बनू मैया का खलीफा था उसके लिए शराब ले जाई जा रही थी। तो अबू हुसैन को बड़ा गुस्सा आया, हाथ में लाठी थी, मटकों को यके बाद दीगरे तोड़ना शुरू। अब आप देखें कि बुराई है, हराम है, अब कुव्वत से हाथ से उसको तोड़ रहे हैं, हालांकि पता चल गया कि ये खलीफा के लिए जाए जा रहे। मल्लाह इस दौरान इनको मना करता रहा, मगर वो कब बाज आने वाले थे। आखिर मल्लाह ने पुकार की, लोगों ने बुलाया, और दौरान एक मटके के अलावा सारे शराब के मटके। पुलिस ने इनको पकड़ा और खलीफा के सामने पेश किया। खलीफा ने पूछा, मन अंता वैलक, तेरी बर्बादी हो, आखिर हो तुम कौन? जवाब में उसने कहा कि मैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम देने वाला हूँ। खलीफा ने पूछा, इस काम पर तुम्हें किसने मुकर्रर किया? कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, जिस हस्ती ने आपको खलीफा बनाया है उसी ने मुझे इस काम का क्या है। कौन सी हस्ती? अल्लाह रब्बुल इज्जत। खलीफा ने अपने सर को झुकाया और बोला, ये काम करने में जुर्रत कैसे हुई, तुमने ये काम क्यों किया? जवाब में कहने लगे, तुम्हारे साथ मोहब्बत और प्यार की वजह से, ये तुम्हारे लिए नहायत गैर मुफीद, मकरूह और नुकसानदेह। खलीफा ने अपना सर झुकाया, जरा सा सोचा और कहा, अच्छा बताओ, तुमने सारे मटके तोड़े, एक जो बाकी रह गया उस माने लगे, दरअसल जब मैंने मटकों को तोड़ना शुरू किया तो मेरे दिल में महज रब की रजा की नीयत थी, और मैंने उसकी जलाल की खातिर ये काम किया, मगर आखिरी मटका तोड़ने से पहले मेरे दिल में गुरूर पैदा हुआ, जब आ गया कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, अपने ऊपर मैं फख्र महसूस करने लगा, बावजूद ये जानने के कि ये माल खलीफा का है कोई परवाह नहीं, और मैंने इसको किया। जब ये ख्याल मेरे दिल में आया ये काम रजाए इलाही के ही रहा था, लिहाजा मैंने आखिरी मटका। खलीफा कहने लगा, जाओ, अब हमने तुम्हें जो है वो मुहतसिब मुकरर कर दिया, और अब जो भी तुम्हें नजर आए उसे तब्दील कर दो। अबू हुसैन नूरी ने कहा, जनाब, अब मेरा इरादा इस काम को करने का नहीं रहा। खलीफा ने पूछा, क्या वजह है? जवाब दिया, पहले ये काम रब की रजा के लिए और इसकी मदद के साथ करता था, और अब तुम्हें राजी करने के लिए मदद से करूंगा। नहीं, खलीफा कहने लगा, अगर कोई हाजत हो पेश की। फरमाने लगे कि मुझे इस दरबार से बगैर किसी नुकसान के निकलने की इजाजत दे दें, और मेरे रास्ते में कोई रुकावट है वो। और इस तरह अबू हुसैन है बगदाद से निकलकर बसरा में जाकर रहने लगे, उन्होंने अपने आप को पाए रखा। तो ये है कुव्वत के साथ, हाथ के साथ जो है वो नेकी का हुक्म देना और बदी से जो है वो मना करना। तो हम सबको फिक्र होनी चाहिए, ये है कि अल्लाह का दीन जो है वो लोगों तक पहुंचे, मुसलमानों तक भी और फिर गैर मुसलमान, और यही हमारी सबकी जो है वो बेसियत मुसलमान हम सब जो है वो जिम्मेदारी बनती है। और एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह को नसीहत की कि ए अली, तेरे जरिए एक शख्स का हदायत पा जाना दुनिया और माफिया से बेहतर है, कि जो दुनिया है और दुनिया के अंदर है तो उससे बेहतर है कि अगर तेरे जरिए जो है वो तक जो है वो का पैगाम जाए। और आप देख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी हमारे लिए उसवा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा उस्वा है वो क्या है? आप हुस्ने इंसानियत, आप रहमतुल आलमी, आप दाइये आजम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जाने के लिए है वो क्या किया? बड़े बड़े जो है आपने जिंदगी के मुश्किल तरीन सफर किए, उसमें गजवात भी आती हैं और ताइफ का सफर भी आता है। और आप सोचते अब यहाँ अल्लाह रब्बुल फरमा रहे हैं कि दुनिया में तमाम ग्रोहों में बेहतरीन ग्रोह वो है हदायत के लिए मैदान में लाया गया है, नेकी का हुक्म देने वाला और बदी से मना करने वाला। तो आप सोच लें कि आप जिंदगी के हर मामले में आप ये चाहती हैं ना कि आप बेहतरीन, आप जो है आपका एक बड़ा ऊंचा मकाम हो। और यहाँ पर ऊंचा मकाम किन लोगों को मिलेगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा ये जो माँ है, स्कॉलर्स हैं, ये जो दूसरे लोग हैं उनको ये काम करना चाहिए। याद रखें कि ये काम करने के लिए नस्ल की, नसब की या खास लोगों नहीं है कि वो ये काम करें। उन तमाम लोगों को ये काम करना चाहिए जो खैरा उम्मत जो है उसमें शामिल, और तीन काम करने से खैरा उम्मत में शामिल हो सकते हैं। नंबर एक, नेकी का हुक्म देना, नंबर दो, बदी से मना करना, और नंबर तीन, ये काम जो है वो अल्लाह की ईमान की बुनियाद पर। फिर फरमाया वलौ आमना अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम, ये अहले किताब ईमान लाते के हक में बेहतर था। अहले किताब से मुराद यहाँ पे बनी इसराइल है। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अगर ये लोग ईमान ले आते तो इनके हक में बेहतर था। अक्सर फासिक, इनमें ईमानदार भी पाए जाते हैं मगर अक्सर लोग जो है वो नाफरमान। अहले किताब के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। फासिक कौन होते हैं? ईमान और अताअत से निकल जाने वाले। तो ज्यादा लोग तो ईमान और अताअत से निकल जाने वाले हैं, लेकिन में कुछ ईमान लाने वाले लोग पाए जाते हैं। लें यदु इल्ला अज़ा, ये तुम्हारा हरगिज कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लें यदु हरगिज तुम्हें जो है ये जरर या नुकसान जो है वो जा सकते। वो द्वाद रा रा जो है इसके मानी है इल्ला अज़ा, अज़न जो है अज़ियत, सताना, यही इसका रूप है। हमजा, जाल या के मानी है दुख के। ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अजियत का, सताने का, जैसे जबान से किसी पे जो है वो कोई इल्जाम लगाना, किसी को बुहतान लगाना, किसी के दिल को वक्ती तौर पर तकलीफ पहुंचाना, बातें करते हैं या ऐसे ताने या जबान के ऐसे चलाते कि ये लोग तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते, भी बिगाड़ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कर सकते हैं तो क्या? लाजन के बस तुम्हें कुछ जो है वो सता सकते हैं, जैसे गाली देना, बुरा भला कहना, साजिश करना या प्रोपेगंडा करना, उसके अलावा कुछ। वहीं युकातिल वल्लू अदबार, और अगर ये आपसे लड़ेंगे तो क्या करेंगे? वल्लू लाम या के मानी है पीठ फेरना, और अल अदबार दाल बार रा दुबर पीठ को कहते हैं, अल अदबार इसकी जमा है। तो ये वल्लू फेर लेना, पीठ फेर लेना, तो ये क्या करेंगे? पीठ फेर लेंगे, अपनी पीठों को फेरेंगे, यानी मुकाबले में जो है वो जीत नहीं सकते। ये अगर जंग करेंगे तो तुम दबा कर भागे, ये है युवल्लू बार। बताया जा रहा है कि ये जो है वो मैदान के आदमी बस सिर्फ जबान से ही बातें करने वाले, इंसान को हरब जरब इसमें नहीं है मुसलमानों को। और आप देख लें मदीना से निकलना पड़ा, खैबर फतह हो गया, वहां से शाम के इलाकों में ईसाइयों मुसलमानों के हाथों जो है वो शिकस्त चार होना। तो यही बात है कि मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है ये मैदान में जाकर जो है वो फतह हासिल नहीं कर सकते। मलायून फिर जो है वो ने कहीं से मदद ना मिल, जैसे मुनाफिक जो है वो बातों में कहते थे ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, साजिशों में साथ शरीक रहते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं कि ये मुनाफिक जो है ये बत अलैहि लतु अयनमा दुरीबत दरबा का मतलब होता है कि मारना, और दुरीबत मार दी गई, मुसल्लत कर दी, मुकद्दर कर दी गई। ये मुहावरा है कि इन पर जो है वो मार पड़ी या मुकद्दर कर दी गई। अलैहि जिल्लत जिल्लत अइना मा सुकिफ जहां के पाए जाए। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है। अब आप देखें गुरीबत अलैहि जिल्लत ऐसे मुहावरा है जैसे जिस तरह दीवार पर गीली मिट्टी थोप दी जाती है, इसी तरह पर जिल्लत के इज्जत की जगह जिल्लत की राह जब इन्होंने इख्तियार की, ईमान की बजाय इन्होंने कुफ्र और फिस्क का रास्ता इख्तियार किया, तो इन पर भी तरह जो है वो जिल्लत इस तरह इन पर थोप गई, मुसल्लत कर दी तरह दीवार पर जाती है ना, तो वो दीवार के साथ चिपक कर रह जाती है। जिल्लत जो है ना पर मुसल्लत हो ऐना मासूम के मानी है कि ये जो जिल्लत है हमागीरी है, ये जहां कहीं भी रहें ये जलील है, दुनिया का कोई खिता ऐसा नहीं जहां इन्हें इज्जत या वकार जो है वो हासिल हो, दुनिया में कहीं भी जो है इन्हें है इल्ला मगर हब्लिम मिन अल्लाही व हब्लिम मिन अन्नास। अब आगे जो है वो बताया जा रहा है कि जो है वो दो वजूहात हैं कि वजह से इन्हें सकता है। पहली क्या है, इल्ला बिहब्लि मिनल्लाह के अल्लाह की रस्सी, तो रस्सी का लफ्ज यहाँ पे मुआयदे या अमान के इस्तेमाल हुआ है, के मानी ये है कि कहीं अल्लाह के जिम्मे अगर इन्हें जो है वो पनाह मिले। अब अल्लाह की पनाह जो है के दो मानी है, एक तो ये कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया ये पनाह में आ गए, और दूसरे मानी क्या है कि इस्लामी ममलकत में जिया देकर जिम्मी की हैसियत से रहना कबूल कर लिया। तो इल्ला बिहब्लि मिनल्लाह के जो है वो दो मानी है कि अल्लाह की पनाह में यानी इस्लाम कबूल करके, या फिर इस्लामी स्टेट में जिया देकर जिम्मी की हैसियत से रहना कबूल। वहब्लि मिनन्नास सूरत है कि या फिर इनको लोगों की पनाह हासिल हो जाए, तरफ से अमान मिल जाए। हबल के मानी वैसे तो रस्सी के हैं, यहाँ पे ये अमान के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसके भी दो मानी हैं, दो मफहूम बयान किए जाते हैं। एक तो ये कि इस्लामी ममलकत की बजाय आम लोग इनको पनाह दे, हबली मिन अन्नास, अन्नास से मुराद आम लोग, कि आम लोगों से कोई इनको पनाह दे, और हर मुसलमान को यह हक हासिल है। अब आम लोगों में से यानी कि इस्लामी हुकूमत ने पनाह दी है, इस्लामी हुकूमत में से कोई भी पनाह दे, ये भी हो सकता है। और दूसरे इसके मानी ये हैं कि कोई बड़ी गैर मुस्लिम ताकत जो है वो इनको पनाह दे। तो ये जो अन्नास है ना, इसमें मुस्लिम मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों तरह के लोग हैं शामिल, कि कोई एक मुस्लिम या कोई एक गैर मुस्लिम या फिर गैर मुस्लिम स्टेट जो है वो पनाह दे दे, तो ऐसा जो है वो हो सकता है। और आप जो है वो बनी इसराइल की हुकूमत कायम है, तो ये कैसे कायम है, जैसे अमेरिका बरतानिया फ्रांस जो है पनाह दी है और निगरानी में है, वजह से बनी इसराइल जो है इसराइल का जो इलाका है कायम कायम है, वरना जो है पूरी दुनिया में आप देखें अमान दे दे या उनकी सरपरस्ती की वजह से फिर फरमाया वबाउ बिगदबिन मिनल्लाहि व दुरिबत अलैहिम मस्कना वबाउ ये लौटे गदबिन मिनल्लाहि अल्लाह के गुस्से के साथ ये अल्लाह के गजब में गिर चुके हैं। वबाउ इसका रूट है बा वाउ हमजा और इसके मानी है लौटना। अल्लाह का गुस्सा जो है ये लेकर लौटे ये अल्लाह के गुस्से में इस तरह से गिर चुके हैं कि हर तरफ से जो है ना ये अल्लाह की नाराजगी जो है ना उसका शिकार है। गदबे मिन अल्लाह आपने सूरत फातिहा में भी पढ़ा ना गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन वदुरिबत अलैहिम कना और जो है वो मार दी गई पर मस्कनत मस्कनत जो है इसका रूट काफ है और इसके मानी है मोहताजी। जैसे एक जगह कोई जब रुक जाता है मानी क्या है मानी ये है कि जैसे गुर्बत आ गई ताजी आ गई ज़ालिका बिअन्नहुम ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ से इन्हें अल्लाह का गजब मिला दूसरी तरफ से मोहताजी इन पर आई तीसरी तरफ से जिल्लत जो है ये उसमें जो है वो बेबस कर दिए गए की वजह क्या है। नंबर एक कानू नबी आयत इल्लाही कि ये अल्लाह की आयात का इनकार करते माजी इस्तमरारी है कानू यक जो है वो आदत बन चुकी है अल्लाह की आयात का इनकार वह यक नल अम या अभी अल्लाह के गैर अल्लाह ताला कहते हैं मैंने उसको आसमानों पर ज़ालिका बिमा असव्वा कानू यअमलून और ये वजह थी मा असव्वा ऐन स्वात या के मानी मासियत और नाफरमानी के हैं कि ये थी वजह इनकी नाफरमानी व कानू यअमलून और ये थी ज़ियादती यअमलून ऐन दाल वो मानी है कि ये जो है वो हदों से निकल निकल जो अब यहां पर जो है ये वजह बताई जा रही है कि ऐ मुसलमानों घबराओ नहीं ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते पर हर जगह अल्लाह की मार है और जो है अगर जी भी रहे हैं तो के सहारे जी रहे हैं के गुनाहों की फहरिस्त दर्दनाक है और है ज़ालिका बिमा ना जायजा लेना बात ला जो है वो बुराइयां देखना पसंद करता है अल्लाह की आयात का इनकार जो है बजाय फिर क्या करना चाहिए अल्लाह की आयात मान लाया जाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है वो है वो जिंदा किया जाए और अल्लाह की एक बंदे अल्लाह उन्हें सताया ना जाए उन्हें कत्ल ना किया जाए वरना फिर अल्लाह का अजाब जो है हर तरफ से है वो हर तरफ से है मुसल्लत और आज उम्मत मुस्लिमा के हालात खराब हैं और हर तरफ जो है वो वादे खाए हुए हैं। असल वजह क्या है कि अपने गरीबान में झांकना चाहिए ईमान की है अल्लाह की आयात का इनकार है और फिर ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और दुनिया से जो है वो फिर फरमाया लैसु सवा आयत नंबर 113 से 115 तक तीन आयत में अहले किताब के नेक लोग हैं जो सालेह गुरु है उसका जिक्र किया जा रहा है। आपने आयत नंबर 110 में पढ़ा ना कि अहले किताब के अंदर दो तरह के पाए जाते हैं वह अक्सर हो फासिक तो आयत 111 और 112 में आपने फासिक की तारीफ नाफरमानों के बारे में आयत 113 से 115 तक में जो है वो अहले किताब के एक लोग हैं इनका जिक्र किया जाता है। ये है उसे फौरन कबूल किया जाए। बहुत अहम बात है कि जो फराइज हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, इस सिलसिले में जो है वो ताखीर ना की जाए। हर लम्हे के साथ एक फर्ज बंधा हुआ है, अगर एक लम्हे उस फर्ज को अदा ना किया, अगले लम्हे जो है वो दो फर्ज हो जाएंगे। एक लम्हे एक फर्ज अदा ना किया और अगले लम्हे फिर दो फर्ज कैसे अदा कर। याद रखें कि जो अल्लाह को लोग पसंद हैं वो कौन है, जो नेकी के कामों में सबकत ले जाने वाले, भागने वाले हैं, दौड़ने वाले, और हर लम्हे हर आन नेकी आपके दिल के दरवाजे पर, आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है, और अगर आप उसको आगे बढ़कर वेलकम करती हैं, खुश आमदीद कहती हैं, जो है आप नेकी में आगे बढ़ जाती हैं, और अगर आप सुस्ती का मुजाहरा करती हैं या कहती हैं कि अच्छा कर लेंगे, चलो अभी कल कर लेंगे और परसों कर लेंगे, काम की इब्तदा आज नहीं करता ना, कि जो है वो कल कभी नहीं आती। के जो है वो बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि अच्छा चलो फिर कल नहा के नमाज शुरू करेंगे, अच्छा आज फजर की नहीं ना मेरी पड़ी, कजा हो गई, अब मैं कल से शुरू, अच्छा आज जो है मैंने ये काम नहीं किया, चलो फिर मैं फलां दिन करूँ, फलां वक्त करूँ। शैतान जो है तेरे से कहता है ये कामों में, अगर कर्ज की अदायगी है तखीर ना की जाए, माफ करना है उसे फौरन माफ किया जाए, साफ किया जाए, मनाना है जो है वो देर ना की जाए। बाज़ुकात ये काम बहुत लेकिन जन्नत का शौक है जो अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता वह उलाइका मिन सवाले, और ये सवाले लोग हैं, सवाले हैं, और अहले किताब में से कि यहाँ पे तारीफ की जा रही है, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह हो, फिर असद बिन उबैद रजी अल्लाह हो, तालबा बिन और सैद बिन सईद, ये वो लोग थे जो अहले किताब में ईमान लाए, और वैसे तो जो है वो और भी ईमान लाए लेकिन में से चंद लोग ईमान लाए, में से ये चार पांच नाम मैंने आपको बताए हैं, वरना ज्यादातर लोग ईसाइयों में यहाँ पे इन्हीं का जिक्र किया जा रहा है, वह उलाइका मिन सवालिहीन, ये सारे के सारे लोग हैं, ये मुत्तकी हैं, ये नेक हैं, ये सवाले हैं, वमा यफअलू खैर फलन वमा यफअलू खैर, और जो भी ये नेकी करेंगे जो है वो हरगिज नकदरी नहीं की जाएगी, तो जो भी ये नेकी करेंगे अल्लाह ताला जो है कदरदानी करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये कोई नेकी करें और फिर अल्लाह उसको जो है वो कबूल ना करे। वल्लाहु अलीम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह परहेजगार लोगों को खूब जानता है, अल्लाह को पता है डरने वाले कौन है। इन्नल लजीना कफरू लन यअनहु अमवालुहु वला औलादु मिनल्लाहि शैआ उलाइका असहाबुन नार फीहा खालिद, रहे वो लोग जिन्होंने कुफर का रवैया अख्तियार किया, लन तुग्नी अन्हुम अमवालुहु वला औलादुहु, तो अल्लाह के मुकाबले में ना उनको उनका माल कुछ फायदा देगा और ना ही औलाद, आग में जाने वाले हैं, असहाबुन नार और आग ही में हमेशा रहने वाले। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफिरों को कयामत वाले दिन ना माल फायदा देगा और ना ही औलाद फायदा देगा। मसलन बाज लोग जो है वो जाहिरी तौर पर बहुत से नेकी के काम करते हैं लेकिन कुफर की वजह से क्या बात बता रहे हैं, वाले वक्त है वो फायदा जो मान मान बगैर जो है माल औलाद और अमले सवाले अल्लाह के अजाब से और अल्लाह की पकड़ से जान, एक तरफ कहा जा रहा है आग ही में जाने वाले हैं और दूसरी तरफ उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले, मिसाल बताई, साल के लिए। सूरह आल इमरान आयत नंबर 17 में अल्लाह कि अहले कुफ्र जो है अगर अपना माल किसी काम में खर्च भी करें कयामत काम नहीं कि उन्होंने कुफ्र किया। मसल उमायून मिसाल इन लोगों की जो खर्च करते हैं, किसकी मिसाल बताई जा रही है इनका जिक्र आयत नंबर 116 में किया कुफ्र करने वाले ना जो खर्च करते हैं हाजिर हयात इस दुनिया की जिंदगी के जो कुछ वो खर्च कर रहे हैं इस दुनिया की जिंदगी में मिसाल ऐसी है का मसल जैसे कि मिसाल है रीहिन एक हवा की फीहा सिर्रुन के इसमें जो है वो पाला हो सिर का लफ्ज जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और इसके मानी है जैसे सख्त सर्दी में जो है वो जो हवा है फिर इसमें जो है बहुत ज्यादा शदीद जो है वो सर्दी हो। असाबत हर सा कौमिन और ये जो है वो चले एक कौम की खेती। असाबत का लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मुसीबत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है और सैयब जो है ये ऐसी बारिश के लिए होता है जो असल में सैयब जो है वो वक्त पर आकर सही जगह पर जो है वो ऐन सही से लगे। और ये जैसे स्वाद वाबा जो है ये तीर के लगने के लिए भी आता है जो ठीक निशाने पर। तो असाबत और ये हवा जो है जैसे सही निशाने पे आके लगी हर सा कौमिन एक कौम की खेती पर हर खेती कहते हैं वो कौम कौन सी थी जलम व अनफुसहुम इन्होंने अपने किया था और जुल्म से मुराद यहाँ पे वह अहलकत और से जो है वो बर्बाद करके रख। यहाँ पर जो है ये बताई जा रही है कि दरअसल इन्होंने किया बजाहिर आप देखें कि इन्फाक किया है सदका और खैरात किया है लेकिन जो है में जो है वो ईमान नहीं है वो कुफ्र करने वाले हैं। तो याद रखें कि दुनिया दारुल अमर है और आखिरत दारुल जजा है। इंसान जो कुछ बोएगा वो आखिरत में काटेगा लेकिन इसके लिए जो है वो तीन शराइत है। नंबर एक के भी करने के लिए अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर दो खुलूस नीयत होना चाहिए और उसमें रिया नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन इत्तबाए किताबो सुन्नत। तो अगर कोई इन्फाक करता है अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता रियाकारी है दिखावा है कुफ्र करने वाला है और वो चाहता है कि दुनिया में हो कर रहा है वाह वाह हो तो फिर अल्लाह के यहाँ जो है वो इसका भी अजर नहीं है। आमतौर पे आप देखें कि जो है वो खेती अगर किसी ने लगाई भी हो और खेती पर अगर सर्द हवा चले सिरुन जो है स्वाद रौरा सर्दी के लिए आता है ऐसी हवा जिसके अंदर ठंडक है बहुत ज्यादा जैसे आप सोचें कि साथ साथ जैसे हवा चल रही है साथ साथ बर्फ सी गिर रही है। तो ये जो है ना ये जो पाला है इसका मतलब क्या है कि ईमान की कमी है उसके अंदर रियाकारी है तो इसलिए उसकी जिंदगी भर की नेकियां उसके अमाल जो है वो जाया हो गया है। वरना हवा खेतियों की परवरिश के लिए मुफीद होती है लेकिन अगर हवा में सिर आ जाए सर्दी आ जाए तो खेती को परवरिश करने की बजाय उसे तबाह करके रख दे। इसी तरह ईमान अगर नेकी के अंदर है तो फिर उसका फायदा है कई गुना बढ़ चढ़कर उसका अजर मिलेगा और अगर ईमान की बजाय उसमें कुफर मिला हुआ है तो जहर मिला हुआ है जो है वो जाया हो जाएगा सारी नेकी जो है वो जाया हो जाएगी। वह अहलका वह लकत को हिला करके रख दिया यानी कुछ भी नहीं मिला। वमा ज़लमहुम अल्लाहु वलकिन अनफुसहुम यज़लमून। तो वमा ज़लमहुम अल्लाहु अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया ये अपने ऊपर करके फिर इसके बाद जो है आयत नंबर 18 अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं बता ना दे। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल मना किया, गैर मुस्लिम ना राजदान ना बनाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम ला यालम ला यालूनकुम खबाला, ऐ लोग ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू बितानतम, कि तुम जो है वो ताना मत बनाओ नेकुम अपने अलावा। नेकुम से मुराद है कि मुसलमानों को छोड़कर दूसरों को बिताना मत बनाओ। बिताना किसे कहते हैं? बा कोई के मानी होते हैं लिहाफ के अस्तर के, जैसे बतन पेट को भी कहते हैं ना अंदर की, उसी तरह बिताना तो रजुल के मानी होते हैं आदमी के अहलो अयाल या उसके जो है वो राजदार या उसके खासुल खवास। तो बिताना जो है ना जैसे कपड़े का बातनी अस्तर अंदर का हिस्सा, इस तरह वली दोस्त राजदार भेदी के लिए बिताना का। अब कपड़े जैसे आप कपड़ा सीती हैं, बारीक है कपड़ा, और जो उसके नीचे आप अस्तर लगाती हैं तो आपके जिस्म के साथ लगा हुआ होता है, जिस्म के साथ तो क्या है अंदर है वो आपकी राजदार है, बतन पेट के लिए आता है ना। इसी तरह बिताना जो है कहते हैं राजदार, ऐसे शख्स को जो के राजदार दोस्त बहुत ही करीबी हो, जिसमें आप अपने मामलात में उससे मशवरा भी लें। तो फरमाया कि ऐ लोगों ईमान लाए हो, अपनी जमात के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार ना बनाओ। ला यालूनकुम खबाला, यालूनकुम का रूट है हमजा लाम वो, के मानी है कमी करना, सुस्ती दिखाना, वो कमी नहीं करते, कमी नहीं करते। खबाला खबाला में खा बा लाम जो है के मानी होते हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है खराबी के लिए। खबाला यानी फसाद पैदा करना, खराबी पैदा करना। तो ये लोग ऐसे हैं कि तुम्हारे अंदर फसाद पैदा करने में कमी नहीं करते। ला यालूनकुम खबाला, तुम्हारे अंदर फसाद पैदा करने में कमी नहीं करते। वद्दू ये चाहते हैं, वो पसंद है, महबूब है, वो दाल दाल मोहब्बत करना, पसंद करना, मा अनित तुम जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। अनित अनित जो है इसका रूप है ऐन नुक्ता, ऐसी तकलीफ पाना जिसमें हलाकत का अंदेशा हो, तहाई तकलीफ के लिए, अशिद्दत जरर के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, शक जहमत तकलीफ। तो ये ख्वाहिश है, ख्वाहिशमंद है, मुतमन्नी है कि मैं इस रास्ते में ठोकरे पेश आए, जहमतों में फंसे, मैं नुकसान और तकलीफ, ये इनको पसंद है। और इसका कैसे पता चलता है? कद बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिम, कद बदतत। अब आप देखें कि बदत जो है बादल वो इसका रूट है, बदू का मतलब होता है बिला इरादा जाहिर होना। कद बददतिल बगदाउ और बुगत दुश्मनी के लिए आता है, तो जाहिर होता है बिला इरादा जाहिर होता है अल बगदाउ दुश्मनी, मिन अफवाहिम इनके मुंह से। तो अफवाहिम का रूट है फा वहा, फा मुंह को भी कहते हैं ना, तो इनके मुंह से जो है ना इनके दिल का बुगत इनके दिल निकलती है, ये जो बात करते हैं ना तो अंदर से जैसे जो है ना जो इनके दिलों के अंदर फितना है और जो इनके दिलों में कुदूरत है और ये जो जलते भुनते रहते हैं हसद की आग में, तो जब ये बात करते हैं तो खुद से इसका अंदाजा होता है। वमा तो अकबर, और जो कुछ दिलों में छुपाया है वो इससे भी बड़ी बात है। वमा तो जो कुछ छुपाया है सुरहुम अपने में अकबर, इससे भी बड़ा है, जो कुछ से जाहिर होता है दिलों में इससे ज्यादा हसद छुपाया हुआ है। साफ साफ हदायत देती हैं अगर तुम अकल रखने वाले हो। अब यहाँ पे मुसलमानों को ये बताया जा रहा है क्या हदायत दी, कि मुस्लिमों को छोड़कर गैर मुस्लिम जो है वो यार या दोस्त या राजदान जो है वो नहीं बनाना, उनको अपना मोतबिद मोतमिद और मशीर नहीं बनाना। इस सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जिस शख्स ने बताया जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस से भी ये बात जो है वो पता चलती है कि आपने जो है वो से मना किया कि जो गैर मुस्लिम है उनको राजदार बनाया जाए। जैसे आप देखिए कि हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह कौन थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर। तो एक दफा हीरा का एक ईसाई गुलाम था, बड़ा ही कातिब था, बड़ी अच्छी कताबत करता था। तो किसी ने इनको मशवरा दिया हजरत उम्र को कि आप उसे अपना कातिब कर। उन्होंने कहा मैं किसी गैर मुस्लिम को अपना बिताना और राजदार बना लूं, ऐसा नहीं हो सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह ने जो थे वो पसंद नहीं करते थे कि गैर मुस्लिम को अपना बिताना बनाया जाए। अब यहाँ पे भी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जो है अपने बातें अपने मुसलमानों के राज जो है ना बताया करो कि ये मुसलमानों को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर वक्त गैर मुस्लिम है मुसलमानों की तबाही और बर्बादी जो है वो इस पे और ये तमन्ना करते हैं मुसलमानों को किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे आप सब लोग रहते हैं तो अमल का क्या सोच होता है कि साथ जो है वो किया जा सकता है, दोस्ती की जा सकती है और जो है मुश्किल वगैरह में उनके काम आया जा सकता है, जो है वो नहीं बनाया जा सकता। और इसी तरह जैसे हमारे दोस्त हैं जो फ्रेंडशिप है गहरी है जो प्यार है तो है वो सिर्फ मुसलमानों से है वो बढ़ानी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं कि वो तो जरा भी मोहब्बत नहीं करते और तुम जो है वो अपना कलबी दोस्त जो है वो मत बनाना। हा अंतु लाई तुम ना हो, फरमाया कि ये तुम हो कि तुम इनसे मोहब्बत करते हो, वला वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। बिल किताब हालांकि तुम तमाम बे आसमानी। अब जैसे वैसे मुसलमान के जो है हम कुरान के साथ तौरात को भी मानते हैं तो हम तमाम किताबों को मानते हैं, क्या करते हैं कुरान को अच्छी बात है सब कुछ बे आसमानी पर ईमान लाते हैं। वाइजा लकू जब मिलते हैं तुमसे क़ालू आमन्ना कहते हैं कि हम ईमान लाए। का रूट है लाम काफिया, लाम के मानी है मुलाकात कर। वैसा खलो जब वो अलग हो जाते हैं आद काटते हैं आइन द्वाद द्वाद इसके मानी होते हैं कि में जो है वो चबाना। आइन द्वाद द्वाद के मानी है दांत से काटना, जैसे उंगली जब मुंह में रखा जाए अदा दांत से काटना। अनामिल अनामिल जो है लाम से है नमल और अनामिल जमा है उंगलियों का बलाई हिस्से। तो गुस्से में और गजब के अंदर ये अपनी दांतों से काटते हैं। दरअसल ये गैज और गजब की शिद्दत जो है ना इस मुहावरा इस्तेमाल ना ये लोग गुस्से में रहते हैं और क्या करते हैं वाइजा खलो अद्दु अलैकुम अनामिला अलग होकर अपनी उंगलियां हैं को में रखकर चबाने लगते हैं। आप इनसे कह दीजिए कि अपने गैस अपने गुस्से में मरो, आप जल मरो अपने गैस यानी हसद की आग में ही तुम जल जाओ। अल्लाह अलीम जाति बेशक अल्लाह राज है वो जानता है। अब यहाँ पर जो है वो मुनाफिकी और हसद है इसका जिक्र किया जा रहा है और मुसलमानों को नसीहत की जा रही है कि ये तुमसे जो है वो बस बातें करते हैं और बातें करके से जो है फायदे हासिल करना चाहते हैं, असल में जो है वो से नफरत और दुश्मनी रखते हैं, हमारी कामयाबी से नाखुश होते हैं। अल्लाह को खूब पता है इन तमसस्कुम हसनतुन अगर पहुंचती है तुमको कोई हसना, और हसना का मतलब क्या है कि तुम्हारी तादाद में इजाफा हो, तुम्हें पता मिल जाए, तुम मुसलमान हो जाए, मुसलमानों के हालात अच्छे हो जाए, जब तुम्हें खुशी या हसना भलाई मिलती है तसु तो इनको बुरा लगता है। सीन वो हमजा इसका रूट है, वाइन तुसिबकुम और स्वाद वो बाइस का रूट है, और अगर पहुंचती है तुमको सही है तो बुराई मुसीबत परेशानी बदहाली फिर क्या होता है से काम लो और अल्लाह से डरते रहो। अब किस चीज से सबर करना है? जब यहूदों नसारा से और मुनाफिक मना किया गया है, क्या करना है फिर? इसमें सबर करना, इनके मकर और फरेब से बचने का तरीका और इलाज तो अल्लाह ने बता दिया है कि ये इस्लाम और मुसलमानों की साजिशें करते रहते। तो अब जाहिरी तौर पर तुम्हें बातें जो हैं वो बड़ी लच्छेदार लगे, बड़ी ही अच्छी लगे, लेकिन सबर करना, इनको जो है वो अपना जी बनाना, तत्ताकू और इनसे बचते रहना, ला या दो कई दो या, तो इनकी कोई तदबीर जो है वो तुम्हारे खिलाफ जो है वो कारगर नहीं, ला या दो को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कई दो कुछ। अब आप देख लीजिए कि आयत नंबर 118 से लेकर 20 तक जो है, एक तरफ जो है वो से करने से अल्लाह रब्बुल मना किया और गहरा बनाना, और दूसरी तरफ जो है मुसलमानों को बताया कि वजह क्या है कि ये मुसलमानों के लिए साजिश जाल बिछाते रहते हैं, और तीसरी तरफ मुसलमानों को बताया कि गैर मुस्लिम साजिशें जो हैं उससे बचने का तरीका क्या है कि इन सबर करो और चाले हैं। बात देख लीजिए, काश के मुसलमान जो हैं आयात पर जो है वो गौर फिक्र इस्लामी ममालिक हैं भी जो हैं आयात पर गौर करें तो किसके सामने जो है वो अपनी याद रखनी चाहिए, किसके सामने जो है वो अपनी परेशानियां जो है वो रखनी चाहिए, किससे मदद मांगनी चाहिए, किसके सुपुर्द अपने आप को करना चाहिए? अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को, अल्लाह को माबूद बनाया जाए, अल्लाह ही से मदद मांगी जाए और आजमाइशों करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो फतह भी देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मुसलमानों जाहिरी तौर पर जो हालात नजर आ रहे हैं अल्लाह हालात से मुसलमानों को निकालेगा, अपराधी जिंदगी की और इज्तमाही जिंदगी हर शोबे के लिहाज से एक ही बात है कि और वो क्या है, वाइन तस व तत्ता। और याद रखें जैसे मुश्किलात और परेशानियों से निकलने का एक ही इलाज है, एक ही हल है, और वो ये कि तकवा इख्तियार सबर किया जाए, और ये सबर और तकवा जो है ये कामयाबी है, ये जमानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूं कि अगर लोग इस पर अमल करें तो इनके लिए दुनिया और आखिरत के लिए वो काफी है। दुनिया के लिए आयत क्या है? रजा, जो शख्स अल्लाह ताला से डरे अल्लाह ताला फिर ये रास्ता निकाल दे। मा यामुल है अल्लाह उस पर हावी। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहमदिक।